रजत अरोड़ा इज योर फुल नेम और आप दिल्ली से हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, एमटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं।
एमटीएफ में, ओके। एमटीएफ मतलब मार्जिन ट्रेडिंग।
मार्जिन ट्रेडिंग
मतलब थोड़ा बहुत पैसा आप ब्रोकर से उठा लेते हो।
ब्रोकर से उठा लेते हैं, नहीं तो फिर ट्रेडिंग इतना कैश नहीं हो पाता ना, कैपिटल ही कम हो जाती है।
आप आए थे 2015 में,
2015
फिर कुछ समय किया, फिर पढ़ाई में व्यस्त हो गए, फिर वापस आए 2021 में।
नहीं, 2015 में कर रहा था।
हाँ।
15 में फादर को पैरालाइज भी हो गया।
अच्छा।
फिर थोड़ा बहुत कम हो गया।
हाँ।
16 में भी थोड़ा बहुत ही चलता रहा।
हाँ।
फिर 17 में फादर की इम्प्रूवमेंट हो गई थी, तो मैं दोबारा से 2017 में पूरा साल फुल टाइम किया कर रहा था। 18 में भी किया है। 19 में फिर फादर की डेथ हुई है, फिर 6-8 महीने का ब्रेक हो गया।
अच्छा, आप कोई बड़े समय के लिए रुके नहीं हो?
का नहीं हूँ, लेकिन ये था पहले छोटे लेवल पे हो रहा था। 2020-21 के बाद ये थोड़ा कैपिटल बढ़ गई, मेरी जॉब भी लग गई थी, सेविंग हो गई थी, तो इसलिए तब ज़्यादा लेवल पे की है।
ओके ओके।
मेन प्रॉफिटेबल ये दो पिछले साल और इस साल, मतलब कि 10-12 लाख का पिछले साल प्रॉफिट था, इस साल भी 15-1 लाख का प्रॉफिट।
तो आई स्टार्ट फ्रॉम 2015 से फिर, कि 2015 में आपके पास कैपिटल भी कम होगा, मार्केट से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी, नॉलेज भी कम होएगी, और फिर उस समय एक्चुअल में जो बिगनर आज का है, देखो बिगनर कभी, बिगनर की सोच कभी चेंज नहीं होती है। हम 2040 में भी सोचे बैठे होंगे ना, बिगनर ट्रेडर तब एंटर करेगा तो ऐसी सोच से ही करेगा, क्योंकि उस चीज़ को भी तो 9 साल हो चुके हैं, लेकिन आज का ट्रेडर भी तो वही कर रहा है जो आप कर रहे थे 2015 में। तो 2015 में जब आप बिगिनर थे, तब आपकी सोच एग्जैक्टली क्या थी, कितना पैसा लेके आए थे और क्या किया मार्केट ने आपके साथ?
मैं 2015 में जब आया था, तो मुझे पता चला था अपने जो बॉस थे, मैं जब सीएस इंटर्नशिप कर रहा था।
सीएस क्या होता है ये बता?
कंपनी सेक्रेटरी,
सीए का छोटा भाई।
सीए का छोटा भाई। मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहा था, तो उसकी इंटर्नशिप के लिए जब मेरे बॉस थे, उनके मुंह से मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला कि कंपनी सेक्रेटरी जब मैं कर रहा था कि शेयर ट्रेडिंग क्या होता है, क्योंकि उन्होंने डीमैट अकाउंट खुलवा रखा था। उन्होंने मुझे बताया, वो रोज़ उनके मुंह से सुनता था फ़ोन पे, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते थे कि आज ये शेयर खरीदा है, आज वो शेयर खरीदा है, आज मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, आज इतना लॉस हुआ। मैं भी रोज़ सुनता रहता था। एक दिन मैंने बॉस से पूछ लिया, मैंने कहा सर ये क्या ट्रेडिंग करते हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये मैंने डीमैट अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो ऐसे इसमें शेयर का आता है, ऐसे बाय करते हैं, ऐसे सेल करते हैं।
वो किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे थे खुद?
वो भी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे, कैश में ट्रेडिंग करते थे, और उनका थोड़ा सा फोकस था जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक होते हैं, वो बड़ा भी रहेगा तो मेरे को डिविडेंड आता रहेगा, उनकी सोच ये थी। तो फिर मैंने कहा सर मेरे को भी खुलवा दो डीमैट अकाउंट, मुझे तो लगता था बहुत बड़ा प्रोसीजर वाला काम है ये डीमैट अकाउंट खुलवाना है। तो उन्होंने ऑफिस में ही बुलवा लिया और मेरा ICICI डायरेक्ट में फर्स्ट टाइम खुला था अकाउंट। तो उस पर फिर मैंने छोटी सी कैपिटल से स्टार्ट किया, 10-15 हज़ार, क्योंकि उस टाइम तो इंटर्नशिप में तो कोई पैसे भी ज़्यादा नहीं होते थे, घर से मैंने लिए नहीं।
10-15 हज़ार ये आपकी सेविंग थी?
हाँ, वही जो इंटर्नशिप में मिलते थे, वही वो मिलती थी, तो उसी से स्टार्ट कर दी 10-15 हज़ार की। वही कैश में ट्रेडिंग करते थे, तो 10-15 हज़ार लगाए, 1,000-1,500 की एक्सपेक्टेशन होती थी पहले तो।
रोज की?
रोज की।
तो 10,000 लगाए तो
1,000 रोज के 1,000 रुपये निकाल लो।
हाँ, रहने का 200।
हाँ, क्योंकि समझ तो थी नहीं, ऐसा लगता था शेयर मार्केट में तो बहुत रिटर्न मिलता है, 1,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। अब ये नहीं सोचा कि 10,000 रुपये, 1,000 रुपये 10% हो गया डेली का, इतनी समझ।
एवरी साल का 7% देती है और एक दिन का 10%,
बस वही है ना, शेयर मार्केट से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है।
बट आपके पास आपके बॉस थे, आपने इस बात की राय नहीं ली उनसे कि यार कितना बन जाता है?
वो एक्चुअली में जब ऐसी शेयर मार्केट की ज़्यादा बात करोगे, ऑफिस के काम पे ज़्यादा ध्यान दो।
करेक्ट, आपके बॉस हैं इवेंचुअली वो,
तो फिर उनसे ज़्यादा इस डिटेल में नहीं होता था, बस डीमैट अकाउंट खुलवाया और मैं जो ट्रेडिंग करता था वो बॉस से डिस्कस भी नहीं करता था।
ओके, तब तो यूट्यूब भी नहीं था?
तब यूट्यूब भी नहीं था।
फिर आप स्टॉक कैसे चुनते थे?
स्टॉक में ऐसे चुनता था जो नाम सुने होते थे, रिलायंस का सुना हुआ है, HDFC बैंक सुना हुआ है, इन्फोसिस सुना हुआ है, लेकिन मैं ये लेता था, ये तो ज़्यादा इनमें कोई मोमेंटम भी नहीं होता था, 1-2% गिरा, 1-2% बढ़ा, इसमें कैपिटल भी सारी ब्लॉक हो जाती है, कुछ तो रिटर्न मिलता नहीं है। मैं भी फिर वो पेनी स्टॉक 5 रुपये 10 रुपये,
अच्छा ये सब
ऐसे शेयर देखने लग गया।
क्या बात,
वो लिया। और शुरू शुरू में होता है ना, किस्मत भी साथ दे जाती है।
हाँ।
और किस्मत भी ऐसे ऐसे नाम वालों से कमाया, मनपसंद बीवरेज, इन्फीबीम, इनसे पैसे
तो
कमाए।
अच्छी है इन्फीबीम, तो अच्छी थी मतलब किसी समय पे,
उनसे पैसे कमाए। और शुरू शुरू में काम ठीक चल रहा था, हमें रिटर्न तो मिल जाते थे। फिर एक बारी जो दिवाली वाले दिन ट्रेडिंग होती है ना, मोरल ट्रेडिंग,
मोरल ट्रेडिंग,
उस दिन शाम को 1 घंटे के लिए होती थी,
1 घंटे के लिए।
हाँ, तो जो मेरे पास शेयर थे सारे 5-5% बढ़ गए। ये तो बहुत बढ़िया काम है।
दिवाली हर साल,
दिवाली उसमें मेरे को मिल गए थे 10,000 के ऊपर उस दिन मिल गए थे।
अच्छा,
काफी अच्छे पैसे मिल गए थे। फिर मैंने इसको सोचा कि इसको तो सीरियसली लेते हैं, अगर मेरे पास इतनी कैपिटल होती तो आज तो मैंने इतना कमा लिया होता। फिर ये 2015 से स्टार्ट किया, 2016 तक चलता रहा यही सब चलता रहा, लेकिन छोटी कैपिटल थी।
तो मार्केट ने आपको अपनी सच्चाई कब दिखाई?
मार्केट ने सच्चाई मेरे को दिखाई है 2018 में।
अच्छा, 2-3 साल ये आपका चलता रहा बिंदास?
एक्चुअली बीच में ना थोड़ा सा फैमिली इश्यूज भी आ गए, मेरे फादर को पैरालाइज हो गया।
अच्छा,
तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम के लिए मैंने ट्रेडिंग छोड़ भी दी थी 2017 में। फिर फादर थोड़े से रिकवर कर गए थे तो मैं दोबारा से ट्रेडिंग में, और उस टाइम मेरी जॉब भी लग गई थी 2017 में, तो कैपिटल अच्छा। भी थोड़ी आनी शुरू हो गई थी क्योंकि अब सैलरी आ रही थी। पहले तो इंटर्नशिप के तो पैसे कुछ खास होते नहीं थे, सैलरी आने लग गई तो चलो अब कैपिटल भी बढ़ गई। फिर मेरे को पहला झटका लगा था यस बैंक में।
ओके, सबके साथ इकट्ठी लगा आपको?
तो मैं उस टाइम लगाने लग गया था, 1,000-1,000 शेयर ले लेता था यस बैंक के। उस टाइम 240-250 का ऐसा कुछ होता था वो।
अच्छा, इतना बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज कर दिया,
2.5 लाख रुपए सीधा उसमें लगा दिए।
अब टोटल कैपिटल कितना था 2017-18 में?
मेरे पास होगा 4-1 लाख होगा।
तो कैपिटल का कितना परसेंट हो गया ये?
लगा 60-70% हो गया, क्योंकि ऐसे उस टाइम तो ऐसे कोई स्ट्रेटजी तो थी नहीं। मैं तो ये देखता था यस बैंक का अभी तो 3-4 दिन पहले 250 चल रहा है, आज 220 में मिल रहा है, तो 250 तो वापस आना ही आना है उसने, तो 220 पे ले लो, 1,000 सीधा ले लिए।
स्टॉक तो बहुत सारे गिरे होंगे बढ़ते होंगे, तो आपकी नज़र सिर्फ यस बैंक पे क्यों पड़ी?
क्योंकि यस बैंक में मैंने 2-4 बारी कमा लिया था तो वो फेवरेट स्टॉक सा बन गया था।
बेसिकली आपकी स्टॉक चूज करने की स्ट्रेटजी यही थी कि जो गिर गया है पिछले 3-4 दिन से सस्ते में मिल रहा है, फिर वापस उतना जाएगा तो मैं निकाल लूंगा।
ये तो कभी पता ही नहीं होता था कि लगातार गिरता भी जाता है। मैं सोचता था एक बार इस रेट पे आ गया, दोबारा तो जो पहले रेट चल रहा था उस पे आना ही आना है।
तो जो अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं
वो कुछ भी नहीं पहुंचे, कुछ भी नहीं पहुंच पता,
वो भी सही तरीका नहीं है,
वो भी नहीं देख रहा था।
और आपको कोई बड़ा फटका नहीं लगा 2-3 साल?
किस्मत से वो यस बैंक में भी पोजिशन मेरी बच गई, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ। उस दिन मेरा सीएस का सेमिनार था, तो जहां पर वो होटल के अंदर था वहां पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। मैंने कहा अंदर जा रहा हूँ तो पोजीशन ना स्क्वेयर ऑफ करके ही चलता हूँ। उसी दिन वो हुआ जो उसमें लोअर सर्किट पे सर्किट लगने चालू, अगर मैं पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करके चला गया था वो भी बच गया मैं, सिर्फ मेरे को 25-30 हज़ार का नुकसान हुआ, लेकिन उस टाइम कैपिटल के हिसाब से वो भी बड़ा था,
8-10% हो गया अगर 2.5 लाख डाला हुआ था तो,
लेकिन फिर भी मैं बच गया।
तो ये
पहला झटका था,
ये पहला झटका था, पहला बड़ा झटका था,
पहला
बड़े भी हुए होंगे।
हाँ, लेकिन पहले मेरे ज़्यादातर प्रॉफिट ही था, चाहे छोटा छोटा था लेकिन प्रॉफिट ही था, वो तुक्के में ही था, चाहे अंदाजे से ही था लेकिन प्रॉफिट ही।
आप कुछ सीख नहीं रहे थे, कुछ इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, बस आपके पास पैसा आ रहा है, आप डाले जा रहे हो, दैट इज़ प्रीटी मच योर जर्नी उस समय।
हाँ बिल्कुल, ये
कोई दोस्त नहीं है जैसे शेयर कर रहे हो, कोई
नहीं, कोई कोई दोस्त
बात नहीं पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़ नहीं देख रहे हो, कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हो?
हाँ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस वगैरह में कोई न्यूज़ आ जाती थी शेयर से रिलेटेड तो वो देख लेते थे, बाकी ऐसा कोई फोकस लेके कोई नहीं की इसी।
और आपको ये भी ज्ञान नहीं था कि न्यूज़ के बेस पर ट्रेडिंग नहीं करनी?
हाँ, ये भी कुछ नहीं पता था।
तो 2-3 साल तो भगवान की दया से निकल लिए,
निकल गए।
देन ये फटका लग गया यस बैंक का।
के बाद जब ये यस बैंक का फटका लगा तब से मुझे पता चलने लगा नहीं, मैं सीएस खुद हूँ, मैं खुद वो बैलेंस शीट वगैरह देखता हूँ, P&L देखता हूँ, बैलेंस शीट देखता हूँ, कैश फ्लो देखता हूँ, और मैं ही यस बैंक जैसे शेयर में मैंने नुकसान खाया कि मैं कर क्या रहा हूँ।
एज ए सी एस क्या गलतियाँ दिखी आपको यस बैंक के फाइनेंशियल्स में?
एज ए सी एस मुझे ये दिखा कि वो बहुत चीज़ें ना छुपा रहे थे अपने इन्वेस्टर के आगे, जो रियल पिक्चर है ना वो रख नहीं रहे थे। वो कमेंट्स ऐसे करते थे कि हमारा जो शेयर है ना वो डायमंड है, जबकि आप उसकी फाइनेंशियल पोजिशन देखो तो बहुत ही उसमें दिक्कत थी। तो ट्रू पिक्चर अपने शेयर होल्डर के आगे नहीं रखते।
क्या कैश फ्लो गलत थे, ऑपरेटिंग रेवेन्यू या एसेट लायबिलिटी का इशू हो गया कुछ बैलेंस शीट में?
उन्होंने जो अपने लोन दे रखे थे ना वो सारे ऐसे दे रखे थे कि बस वो पता है वो डिफॉल्ट ही होने हैं।
अच्छा, एनपीएस
जो होते हैं।